पृष्ठ संख्या 151, अध्याय 10, नवजागरण का उर्दू पद्य। यद्यपि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रभुत्व भारत के एक बड़े भाग पर फैल चुका था और देश की स्थिति बहुत कुछ बदल चुकी थी, परंतु कला कौशल और साहित्य ने उस प्रभुत्व को पूर्णतया स्वीकार नहीं किया था। यह सिद्ध है कि आर्थिक परिवर्तन और उत्पादन के भौतिक साधनों के कारण मनुष्य की विचारधारा बदलती है और वर्गों के आपसी संबंध भी परिवर्तित होते हैं, परंतु साहित्य और कला में जो परिवर्तन आर्थिक संस्थाओं के कारण होता है वह कभी बहुत मंद गति से होता है और कभी इतनी तीव्र गति से कि दोनों के संबंध का पता लगाना कठिन जान पड़ता है। समानांतर परिवर्तन न होने का कारण यह है कि जो साहित्यिक परंपराएं एक बार बन जाती हैं वह मिटते मिटते मिटती हैं और जन समूह को इतनी प्रिय हो जाती हैं कि आर्थिक परिस्थितियों के बदल जाने पर भी हृदय उनकी ओर खींचता रहता है। अंग्रेज 17वीं शताब्दी से व्यापार करने के लिए भारतवर्ष में आने लगे थे और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वह व्यापार के साथ साथ देश के कुछ भागों के अधिकारी भी बन बैठे थे। इंग्लैंड में विज्ञान की उन्नति के फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और भारत कच्चे माल की एक बहुत बड़ी मंडी बन जाने की स्पष्ट क्षमता रखता था, क्योंकि यहाँ न विज्ञान था और न यह शक्ति कि अपने घरों की पूंजी को बाहर जाने से रोका जा सके। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से यह मुगल सामंतशाही के पतन और एक नवीन व्यापारिक तथा औद्योगिक विकास का युग था, जो अंग्रेजी साम्राज्य और यूरोपीय पूंजीवाद के संपर्क से उत्पन्न हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि एक प्रकार का द्वैत था जिसमें यहाँ की आर्थिक उन्नति जकड़ी हुई पड़ी थी। उसकी प्राचीन परंपराएं उसको आदिम कृषि प्रधान आर्थिक स्थिति और घरेलू उद्योग धंधों की ओर खींच रही थी और यूरोप से उसका संपर्क उस नए मशीनी जीवन की ओर जाने का बढ़ावा दे रहा था। कई शताब्दियों से भारत की आर्थिक स्थिति और उसका राजनीतिक जीवन बंधे हुए जल के समान शिथिल हो गया था, यहाँ तक कि वह नैतिक, सामाजिक और दार्शनिक मूल्य भी प्रभावहीन हो गए थे जो कुछ समय पूर्व शांति दिया करते थे। भारतीयों का बड़ा भाग ऐसा था जो अपनी प्राचीन सभ्यता को गौरव की दृष्टि से देखता था। उन्हें इस बात का अनुभव भी नहीं था कि उनका राजनीतिक पतन उस सभ्यता ही को अंत की ओर लिए जा रहा है जो उन्हें प्रिय है। उनमें यह साहस नहीं रह गया कि वह बदलती हुई स्थिति में पृष्ठ संख्या 152 अपनी पुरानी पूंजी की दुकान सजाकर बैठ जाएं और लोगों को अपनी ओर खींच सकें, क्योंकि पुराने आर्थिक संबंध टूट रहे थे और जनसाधारण अपनी जीविका के लिए नए मार्ग ढूंढ रहे थे। 19वीं शताब्दी के मध्य तक बहुत से राजमहल गिर चुके थे और उनसे बंधे हुए सैनिक और कर्मचारी बेकार होकर नई नौकरियों की खोज में निकल खड़े हुए थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने नए जीवन के संकट को थोड़ा बहुत समझ लिया था और उसके साथ समझौता करने को तैयार थे। अंग्रेजों ने जो शिक्षा देना आरंभ किया था उसका उद्देश्य भी यही था कि भारतवासियों में ही एक ऐसा वर्ग जन्म ले सके जो उनके विचारों से केवल सहमत ही ना हो बल्कि उनके फैलाने में भी सहायक सिद्ध हो सके। ईस्ट इंडिया कंपनी जो धीरे धीरे यह सब कुछ कर रही थी इस समय तक भारत की सभी जीवित शक्तियों की अधिकारिणी बन चुकी थी। इसमें संदेह नहीं कि वह भारत के ठहरे हुए जीवन में वायु की एक ताजी लहर लेकर आई थी। इस वायु में विष की घातक लहरें और जीवन को नया दान देने वाली धाराएं मिली जुली थी। प्रगति, प्रतिक्रिया और गतिरोध की यही मिश्रित भावना है जिसके कारण इस युग का विश्लेषण कठिन हो जाता है और आलोचक की निर्णय शक्ति छिन्न हो जाती है, तो वह स्थिति को भावुकतापूर्ण दृष्टि से देखने लगता है। कभी भावुक होकर उसकी निंदा करता है और कभी ऐसी सराहना की जैसे उसने भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन को नष्ट नहीं किया था। सच यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने लुटेरों का एक संगठन थी। उसने अपने एक क्षति के अपराध काल में देश को अच्छी तरह लूटा। यदि परोक्ष रूप में उससे कुछ लाभ भी पहुंच गया और किसी प्रकार की नई चेतना का उद्भव भी हुआ तो इसके ऐतिहासिक कारण थे जिनसे विमुख नहीं हुआ जा सकता। जिस नई शिक्षा का प्रारंभ बंगाल से हुआ उसने धर्म सुधार और पुनरुत्थान की भावनाओं को प्रोत्साहित किया जो उस समय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए बहुमूल्य हैं। इसमें संदेह नहीं कि इसमें अंग्रेजी शिक्षा का भी बड़ा हाथ था, परंतु इस बात को भूल जाना भी ठीक न होगा कि जागीरदारी व्यवस्था के पतन काल में वह मध्य वर्ग जन्म ले रहा था जिसके सामने एक नया जीवन था। राजा राममोहन राय सुधार और नवजागृति के प्रतीक थे। उनकी भारतीयता नए ज्ञान से भी दिव्य हो गई। हिंदू और मुस्लिम समाज पर उस नई शिक्षा का जो प्रभाव पड़ा उसका विस्तृत विश्लेषण इस अवसर पर संभव नहीं, परंतु यह अवश्य याद रखना चाहिए कि भारतीयों के अल्पांश व्यक्तियों ने ही इस नए जीवन का अनुभव चेतनापूर्वक किया। सामान्य जनता ऐसी थी जो आर्थिक दृष्टि से पीड़ित होते हुए भी अपनी प्राचीन परंपराओं से चिपटी हुई थी। अंग्रेजी शिक्षा और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आर्थिक संपर्क ने जो महत्वपूर्ण काम किए उनमें नए मध्य वर्ग के जन्म को समसामयिक राजनीति को देखते हुए क्रांतिकारी घटना कह सकते हैं, क्योंकि यही भविष्य में संघर्षों का केंद्र बना हुआ था। पृष्ठ संख्या 153। यह नया मध्य वर्ग ऐसी परंपराएं चाहता था जो अपने देश की उन्नति अंग्रेजी साम्राज्य के बनाए हुए नियमों के आधार पर विकसित करे। उसके पास एक नवीन दृष्टि भी थी जो प्राचीन परंपराओं से संतुष्ट न थी। इसलिए जहाँ भी यह संपर्क घनिष्ठ था वहाँ हम इस नए वर्ग को प्राचीन कृषि प्रधान दृष्टि से ऊपर उठता हुआ देखते हैं। इसी वर्ग ने बाहर से आई हुई नई चेतना को अपनाया और औद्योगिक एवं पूंजीवादी विचारधारा को अपने संकुचित मनोभाव के साथ स्वीकार किया। इस प्रकार उस नए जीवन का बीजपात हो गया जो थोड़े समय में छतदार वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। इतिहास दर्शन के ज्ञाता जानते हैं कि प्राचीन परंपराएं कुछ तो स्वयं पुरानी होकर मर जाती हैं और कुछ नई परिस्थितियों के दबाव से समाप्त होती हैं। भारत के सामंतिक गढ़ टूट रहे थे और पुराने राजदरबार अपनी परंपराओं के संग मिट रहे थे। इसमें संदेह नहीं कि हिंदू जात की अपेक्षा मुसलमान उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग अधिक हठधर्मी के साथ सामंतशाही की लाश से लिपटे हुए थे, परंतु जहाँ तक नई चेतना का संबंध है दोनों में कुछ विशेष अंतर न था। दोनों में से कोई भी परिवर्तित राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को पूर्ण रूप से परख ना सकता था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतवर्ष कृषि प्रधान और उद्योग प्रधान आर्थिक स्थिति के बीच में लटका रहा और सामंतशाही युग की परंपराएं नई विचारधाराओं में इस प्रकार घुली मिली रहीं कि पुनरुत्थान की पूर्ति ना हो पाई। यही वह जटिल स्थिति है जिसे भली भांति न समझने के कारण नए जीवन और नए साहित्य का मूल्यांकन में भ्रम हो जाता है। एक बढ़ती और फैलती हुई विदेशी शक्ति के नीचे दबी हुई जनता के क्रोध और विरोध की आड़ लेकर भारत के पतनशील सामंतवादियों और उनकी सेनाओं ने अपनी बची खुची शक्तियां एकत्र की और अंग्रेजी चंगुल से छुटकारा पाने के लिए आखिरी बार 1857 ईस्वी में सशस्त्र मोर्चा लिया। अंग्रेजी पूंजीवाद के विरुद्ध जागीरदारों और स्वतंत्रता चाहने वालों का यह संघर्ष अंग्रेजों की जीत में समाप्त हुआ। कारण यह था कि उन्नति की भौतिक शक्तियाँ उनके साथ थीं। भारतवर्ष की साधारण जनता इस क्रांति में संगठित रूप से सम्मिलित नहीं थी। सामंतवादी गढ़ में स्वयं फूट पड़ी हुई थी। कुछ जागीरदार अंग्रेजों के साथ थे और कुछ विरोधी दल के। उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा की भावना सामाजिक, सांस्कृतिक और प्राचीन धार्मिक परंपराओं के मिटा देने के भय तक सीमित थी, परंतु इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके नीचे आर्थिक विनाश के भय की एक अचेत लहर भी फैल रही थी जो भविष्य में स्पष्ट रूप से सामने आई और विदेशियों के विरुद्ध एक तूफान बन गई। मुसलमान जागीरदार और जमींदार जो इस संघर्ष में आगे आगे थे बड़ी बर्बरता से कुचले गए, परंतु जागीरदारी जीवित रही और अंग्रेजों ने एक ऐसा स्वामी भक्त जमींदार वर्ग पैदा किया जो प्राचीन जागीरदारी का स्थानापन्न हुआ। मुसलमानों पर एक ऐसा वहाबी आंदोलन चलाने का अपराध भी लगाया गया। पृष्ठ संख्या 154। जो धार्मिक होते हुए भी राजनीतिक रूप ग्रहण कर गया था, अंग्रेजों ने अधिकतर मुसलमानों के राज हरण किए थे, इसलिए दोनों एक दूसरे की ओर से सशंक थे। परंतु जब 1885 ईस्वी में कांग्रेस का जन्म हुआ तो अंग्रेजी साम्राज्य के सामने नई समस्याएं आ गईं। अब उनके लिए आवश्यक हो गया कि भारतीयों की देशभक्ति की इस भावना को, राष्ट्रीयता के इस विचार को रोका जाए। इसलिए उन्हें मुसलमानों से मित्रता करना ही उचित जान पड़ा और सर सैयद तथा कुछ दूसरे नेताओं के प्रयत्न से मुसलमानों के एक वर्ग की स्वामी भक्ति पर मुहर लग गई। विद्रोह के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया और भारत धीरे धीरे अंग्रेजी साम्राज्य का एक उपनिवेश बन गया। विक्टोरिया ने यहाँ का राज्य संभालने की धार्मिक स्वाधीनता की घोषणा कर दी। हिंदू मुसलमान दोनों के उच्च और मध्य वर्ग ने मन ही मन इसका स्वागत किया। भारत के इतिहास में आए दिन राज्य बदला करते थे, एक राजवंश जाता और दूसरा आता था। साधारण मनुष्य के लिए यह परिवर्तन भी इसी प्रकार का था। मुगल दुर्बल हो गए थे, उनकी जगह अंग्रेज आए और अपने साथ जीवन की कई सुविधाएं भी लाए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा और उनके धर्म की रक्षा उनका कर्तव्य होगा। यह सब बातें ऐसी थी कि यहाँ के बहुत से अच्छे विद्वानों को भी उस आर्थिक दुर्नीति के समझने का अवसर न मिला जो उन्हें घुन की भांति खाए जा रही थी। इसी अनभिज्ञता की स्थिति में उनके मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना पूर्ण रूप से उत्पन्न न हुई और लेखक, कवि और कलाकार देशभक्ति और स्वामी भक्ति के बीच भटकते रहे। भारत की प्रत्येक भाषा के साहित्य को इसी पृष्ठभूमि में देखना चाहिए। प्रत्येक लेखक और कवि चेतना की एक नई मंजिल में था, जहाँ एक ओर भारतीय जीवन परिवर्तन के इन अनुभवों से गुजर रहा था, वहाँ ऐसे लेखक भी थे जो उसे ना समझकर पुराना ही राग अलापते जा रहे थे। उनकी दृष्टि से साहित्य कुछ मानी हुई परंपराओं की अभिव्यक्ति का नाम था। वे उसे शाश्वत और परिवर्तनशील समझते थे। उनसे चाहे साहित्य के इतिहास को कोई प्रोत्साहन मिलता हो या नहीं, एक बात तो अवश्य ही स्पष्ट हो जाती है कि जो लेखक जीवन और साहित्य के संबंध को समझते थे, वे अपनी जागृति और चेतना के अनुकूल विचारों और साहित्य में परिवर्तन करने से नहीं झिझकते थे। जीवन को बदलते देखकर वह साहित्य में भी परिवर्तन चाहते थे। इस नई चेतना का सबसे स्पष्ट विकास हिंदी में, भारतेंदु और उर्दू में आज़ाद से होता है। उर्दू में यह लहर तेज हुई तो हाल ही के सहयोग से इसने नए युग का परिवर्तन किया। आज की आधुनिकता को देखते हुए यद्यपि यह पुराना मालूम होता है, परंतु नवीन और प्राचीन कड़ियों को जोड़ने के लिए इससे अच्छा अन्य उदाहरण नहीं मिल सकता। उनका युग क्रांति का युग नहीं था, वरन धीमे परिवर्तन और सुधारवाद पर आधारित था। उस युग की अपनी विशेषताएं थी और अपनी वर्ग चेतना थी। पृष्ठ संख्या 155, जो प्रत्येक स्थान पर समान रूप से स्पष्ट नहीं होती थी, यह साधारण जनता का युग भी नहीं था, वरन इसको उभरते हुए पूंजीवाद और मध्यम वर्ग का युग कहना चाहिए। इस स्थिति में जिस किसी ने सामंतवादी युग को चुनौती दी और उसकी अपेक्षा नए और औद्योगिक युग को प्रोत्साहन देना चाहा, वह उस समय को देखते हुए प्रगतिशील कहा जा सकता है। इस बात की ओर कई स्थानों पर संकेत किया जा चुका है कि भारत में अंग्रेजी राज्य विश्व इतिहास का सबसे काला युग कहा जाता है, पर इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्हीं के संपर्क से भारत को विज्ञान और उसकी कृतियों से परिचित होने का अवसर मिला और भारत के रुके हुए आर्थिक जीवन में उत्पादन और प्रगति के नए यंत्रों से खिलखोरें पैदा हुई। इस स्थिति ने एक नैराश्य की दशा भी उत्पन्न की। कुछ भारतवासी मुड़ मुड़ कर पीछे देखने लगे और बढ़ते हुए नवीन विचारों से डर कर अपने अतीत के विचारों में खो गए। कुछ नवीनता के जादू में फंस कर अपने प्राचीन इतिहास से घृणा करने लगे और इस बात के इच्छुक हुए कि बिना सोचे समझे पश्चिम से आए विचारों को जीवन के प्रत्येक विभाग में स्वीकार कर लिया जाए। बहुत थोड़े से लोग ऐसे भी थे जो चेतनापूर्वक अपने युग की आत्मा को समझने और देशोन्नति की सक्रिय भावना अपने भीतर उत्पन्न कर सके। मेरा विचार है कि भारतेंदु आज़ाद और हाल ही इसी अंतिम कोट से संबंध रखते हैं। एक ओर तो वे लोग उनसे संघर्ष कर रहे थे जो युग के साथ बदलना नहीं चाहते थे, और दूसरी ओर उनसे जो पश्चिम से आई हुई सभ्यता को आंख मूंद कर स्वीकार करना चाहते थे। इन्हीं के विचारों में हमें उस नई चेतना का चिन्ह मिलता है जो सोच समझ कर इतिहास में अपना कर्तव्य पूरा करना चाहती है। मैं फिर इस बात को स्पष्ट से कह देना चाहता हूँ कि वर्ग संघर्ष की दृष्टि से इस युग को समझने के लिए इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उस समय वर्गों के ठीक-ठीक ढांचे इस तरह नहीं बन पाए थे कि उनमें से प्रत्येक वर्ग की चेतना और मानसिक भावना को स्पष्ट रूप से देखा जा सके। इसलिए हमें इस बात से उलझन में नहीं पड़ना चाहिए कि हम एक ही कवि या लेखक में एक ओर अपनी जनता के प्रति प्रेम पाते हैं तो दूसरी ओर उसी के मुंह से अंग्रेजों की प्रशंसा सुनाई देती है। उस स्थिति में स्वामी भक्त या अंग्रेजों की प्रशंसा से तात्पर्य था कि आधुनिक युग की विचारधाराओं को समझना चाहिए। विद्रोह और उसके पश्चात होने वाले अत्याचार और बर्बरता ने भारतवासियों के हृदय में पराजयवादी मनोवृत्ति और निराशा की भावना उत्पन्न कर दी थी। परंतु जब हम यह देखते हैं कि नए आर्थिक ढांचे को स्वीकार करके या कम से कम उसका विरोध न करके भारतेंदु आज़ाद और हाल ही ने अपने धार्मिक क्षेत्रों में रहकर निराश होने की भावना को समाप्त करके तथा अपनी हानि का विचार दूर करके अतीत की महिमा पर गर्व करना, आशापूर्वक जीवन से संघर्ष और भविष्य को अपने हाथों संवारने के लिए प्रोत्साहित होना सिखाया, जो हमें जान पड़ता है कि पृष्ठ संख्या 156 स्वामी भक्त की भावना उसके लिए जीवित रहने और आगे बढ़ने का एक सहारा थी। वे अंग्रेजों की प्रशंसा इसलिए नहीं करते थे कि वे भारतीय जनता के शत्रु थे। यदि हम कुछ न माने तो यही क्या कम है कि उनकी वाणी ने उस समय हिंदू मुसलमानों को भावुकता भरी मौत मरने से बचा लिया।